आरवी के कोमल दिल को शान की बातें गहरा जख्म दे गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, पर शान ने बिना किसी बात की परवाह किए उसे कमरे से बाहर धक्का दे दिया। दोस्त ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बार उदास नम आंखों से बंद दरवाजे को देखने के बाद वहां से चली गई। ये जगह उसके लिए एकदम नई थी। एक शान का रूम जानती थी तो दूसरा सुभाष जी का कमरा पता था। इन्हीं दो जगहों पर तो गई थी वो अभी तक। शान के कमरे से तो धक्के मारकर निकाली जा चुकी थी तो सुभाष जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शाम के 6 बज गए थे। उनके कमरे के बाहर पहुंचकर उसने अपनी मुस्कान के पीछे अपनी उदासी को छुपाया और कमरे के अंदर चली गई। सुभाष जी पलंग पर बैठे कोई बुक पढ़ रहे थे। पास ही शान बैठा था और उनके पैरों की मालिश कर रहा था। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो आरवी को देखते ही सुभाष जी के लबों पर मुस्कान फैल गई। अरे बेटा, आप वहां क्या कर रही हैं? अंदर आइए, आरवी ने उनके पास आते हुए सवाल किया। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना डैड? उसके ऐसा पूछने पर सुभाष जी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, अपनी बेटी के आने पर किसी बाप को डिस्टर्ब हो सकता है भला? वैसे भी हमें काम ही क्या होता है जो हम डिस्टर्ब होंगे? खाली बैठे रहते हैं सारा दिन। जब अंशिका होती है तो मन लगा रहता है, पर जब वो सो जाती है तो अकेले तन्हा बैठे बैठे किताबें पढ़ लेते हैं। अभी भी वही कर रहे हैं। अब आप आ गई हैं तो आपसे बात करेंगे। आरवी उनकी बात सुनकर कुछ परेशान हो गई। आपने आराम नहीं किया जब से कमरे में आए हैं? बुक ही पढ़ रहे हैं? सुभाष जी ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं बेटा, हम तो सोए थे, कुछ देर पहले ही उठे। खाली बैठे हुए थे तो बुक पढ़कर अपना दिल बहलाने लगे। आप परेशान मत होइए, हम सारा दिन तो आराम ही करते हैं। उनकी बात में एक उदासी थी जिसे आरवी पल में भांप गई और उठकर खड़ी होते हुए बोली, सही कहा आपने, आप सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं। आपको थोड़ा बहुत खुली हवा में भी घूमना चाहिए, उससे आपको अच्छा फील होगा। चलिए, मैं आपको गार्डन में घुमाने लेकर चलती हूँ। मैं भी सुबह से खाली बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, मेरा भी मन बहल जाएगा। आप वहीं खुले में बैठकर अपनी किताब पढ़ लीजिएगा और मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी, सुभाष जी ने साफ इनकार करते हुए कहा। नहीं बेटा, आप क्यों करेंगी? क्योंकि आपकी बेटी होने के नाते मेरा आप पर इतना भी हक नहीं कि मैं आपकी थोड़ी सी सेवा कर सकूं। अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो आप उसे भी ऐसे ही मना करते थे। शायद आपने मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं है। अगर आपकी जगह मेरे पापा होते तो मैं उनके लिए भी ये करती, क्योंकि मैंने आपको दिल से अपने पिता का दर्जा दिया है। पर आपने मुझे अपनी बेटी नहीं माना है ना, इसलिए मना कर रहे हैं, आरवी ने उदास चेहरा बनाकर कहा। तो उसकी उदासी सुभाष जी को अच्छी नहीं लगी। आरवी ने अब आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, जब आप मुझे अपनी बेटी मानते ही नहीं हैं तो मुझे यहाँ आने का भी कोई हक नहीं है। मैं अभी ही यहाँ से चली जाती हूँ और दोबारा कभी आपको परेशान करने यहाँ आऊंगी भी नहीं। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो सुभाष जी ने पीछे से कहा, बहुत शैतान हैं आप, अपनी बात मनवाने के लिए हमें इमोशनल कर रही हैं। आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया और क्यूट सा मासूम सा चेहरा बनाकर उन्हें देखने लगी। तो सुभाष जी ने शान को देखकर मुस्कुराकर कहा, हमें व्हीलचेयर पर बिठा दीजिए, आज हम बाहर गार्डन में बैठकर किताब पढ़ेंगे, साथ ही अपनी बहू से थोड़ी सेवा भी करवा लेंगे, उन्होंने आरवी को देखते हुए कहा। फिर आगे बोले, अब तो आप खुश हैं? आरवी ने मुस्कुराकर हामी भरी और उनके पास चली गई। शाम की मदद से उसने उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया, फिर उसे किताब और तेल लाने का बोलकर उन्हें लेकर बाहर निकल गई। वो गार्डन में पहुंची तो अर्पिता जी वहीं एक तरफ खड़ी माली से काम करवा रही थी। सुभाष जी को वहां देखकर वो थोड़ी हैरान हुई, पर अगले ही उनका चेहरा खुशी से दमक उठा। आरवी को देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही थी कि उसने इतनी जल्दी इस घर के और शान से जुड़े हर रिश्ते को दिल से अपना लिया था। आरवी सुभाष जी को लेकर उनके तरफ बढ़ गई। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, आप उठ गई, नींद ठीक से आई आपको? जी बड़ी माँ, अभी ही उठी थी, पर डैड के पास चली गई, सुबह से खाली बैठे बैठे बोर हो रही थी। डैड भी सारा दिन अंदर थे तो सोचा थोड़ी देर बाहर ले आऊं इन्हें, फ्रेश हवा लेंगे तो इनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा और मेरा भी मन बहल जाएगा। सब बताते हुए वो थोड़ी डरी हुई थी कि उनसे बिना पूछे ही वो उन्हें लेकर बाहर आ गई थी। यहाँ आए हुए उसे कुछ घंटे ही तो हुए थे, क्या पता उसका यूं घुलना मिलना बाहर आ जाना उन्हें पसंद आएगा या नहीं। अर्पिता जी उसकी उलझन बखूबी समझ रही थी। आरवी ने अपनी नजरें झुका ली थी और सफाई भी पेश कर चुकी थी, अब शायद उसे इंतजार था उनके कुछ कहने का। अर्पिता जी ने उसका परेशान चेहरा देखा तो बड़े प्यार से बोली, हम समझते हैं बेटा, अभी आपके दिल में क्या चल रहा है, आप यहाँ नई हैं, किसी को ढंग से जानती नहीं है, अभी तक तो आपने अपना घर भी ठीक से नहीं देखा है, पर बेटा हमने आपको पहले ही कहा था और अब फिर से कह रहे हैं, अब से ये घर आपका है, आप बिना हिचकिचाए कहीं भी जा सकती हैं, जो दिल करे वो कर सकती हैं, आप पूरी तरह से आजाद हैं, चाहे तो कमरे में रहें या यहाँ आ जाएं। इतना ही नहीं, अगर आपको बाहर कहीं जाना हो तब भी आप स्वतंत्र हैं। हम आपको अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाए हैं, तो आप इसे अपना ही घर समझें और खुलकर रहें, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने घर पर रहती थी। धीरे धीरे आप हम सबको जानने लगेंगी, तो हमारे साथ खुल मिल जाएंगी, और हमें तो पूरा विश्वास है कि आपका जैसा व्यक्तित्व है आप जल्दी ही उस माहौल में खुल मिल जाएंगी। आपको किसी भी बात के लिए डरने या सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छा लगता है जब आप वो करती हैं जो आपका दिल करता है। जब आप हक से भाई साहब के बारे में सोचती हैं तो गर्व होता है हमें अपनी पसंद पर। आपने तो बहुत आसानी से इन रिश्तों को अपना लिया, और ये तो अच्छी बात है। चलिए अब हमें मुस्कुरा कर दिखाइए। आरवी कुछ रिलैक्स हुई और मुस्कुरा कर उन्हें देखा, तो उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और आगे बोली, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहा कीजिए। आपको नहीं पता आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हम इसी बात को लेकर चिंतित थे कि पता नहीं आप इस माहौल में कैसे रह पाएंगी, इन रिश्तों को अपना पाएंगी या नहीं, पर आपने तो हमारी सारी परेशानी सी हल कर दी। जो हम सालों में नहीं कर पाए वो आपने कुछ ही घंटों में कर दिया। भाई साहब को उन चार दीवारी से बाहर निकालना ही आप। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आप भाई साहब को उस कमरे की कैद से आजाद करवाकर उन्हें खुली हवा में ले आई हैं, वैसे ही जल्दी ही आप शान को भी उनके मन के अंधेरों से बाहर ले आएंगी। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, पर आप ये कर सकेंगी, ये विश्वास है हमारा। चलिए वहां साथ में बैठते हैं। उन्होंने अपनी बात कही और उस तरफ बढ़ गईं जहां पर कुछ कुर्सियां और टेबल रखा हुआ था। आरवी उनकी बात सुनकर कुछ उदास हो गई थी। आखिर शान ने उसे चोट ही ऐसी पहुंचाई कि वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने उनके पीछे चलते हुए मन ही मन कहा, डर लगता है कि कहीं आपका विश्वास ना तोड़ दूं। डैड तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी उनसे जुड़ गई। उन पर अपना हक जताकर उनसे वो करवा लेती हूँ जो उनके लिए ठीक है। पर आपके बेटे को तो मुझसे नफरत है, वो तो मुझे अपनी पत्नी भी नहीं मानते, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते।
दो बार बात हुई है हमारी, और दोनों बार उन्होंने मुझ पर कीचड़ ही उछाला है, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। ऐसे इंसान से मैं खुद कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, नहीं रहना चाहती उनके साथ। पर किस्मत ने मुझे उनसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिसे मैं चाहकर भी झुठला नहीं पा रही। उन्होंने तो कह दिया कि उनके लिए ना इस शादी के कोई मायने हैं और ना ही मेरे लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह है। पर मेरा क्या, जहां मेरी कोई इज्जत नहीं मैं चाहकर भी वहां से जा नहीं सकती। उनसे नफरत करना चाहती हूँ, पर उनकी उन कड़वी बातों में जो दर्द, जो तड़प महसूस करती हूँ, वो मुझे उनसे नफरत भी नहीं करने दे रही। उनकी औरतों के लिए इतनी नफरत यूं ही तो नहीं होगी, कोई तो वजह है उनकी इस नफरत के पीछे। पर किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? कहा तो मैंने कि नहीं मांगूंगी उनसे उनकी पत्नी होने का कोई हक, बस मुझे अंशिका की माँ होने का दर्जा तो दे दें, प्यार ना सही पर थोड़ी इज्जत ही दे दें मुझे। उनके अंदर औरतों को लेकर जो कड़वाहट भरी हुई है उसे निकालना नामुमकिन है। मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं अपने स्वाभिमान को और ठेस पहुंचते नहीं देख सकती, इसलिए अब से मैं उनके कमरे में जाऊंगी ही नहीं, कहीं भी रह लूंगी, इतना बड़ा घर है, पर उनके सामने नहीं जाऊंगी। आरवी ने घर की तरफ देखते हुए आगे सोचा, उन्हें मुझसे नफरत है तो ठीक है, करे मुझसे नफरत, नहीं देखना चाहते मेरा चेहरा तो ठीक है, नहीं दिखाऊंगी मैं उन्हें अपना चेहरा, अब दोबारा उन्हें अपने दिल को ठेस पहुंचाने का मौका नहीं दूंगी मैं उन्हें। बहुत सह लिया, बहुत कुछ कह गए वो मेरे बारे में, मैं वैसी नहीं हूं जैसा उन्होंने मुझे माना है, पर मुझे उन्हें ये समझाना ही नहीं है कि मैं वैसी नहीं हूं। वो जो सोचते हैं सोचते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां अंशिका के लिए हूं तो उसे माँ का प्यार दूंगी, डैड ने मुझे अपनी बेटी माना है तो फर्ज निभाऊंगी मैं उनकी बेटी होने का, जिन लोगों ने मुझे अपनाया है उन्हें खुश रखने की हर संभव कोशिश करूंगी, पर आपसे दूर रहूंगी। उनसे मन ही मन निश्चय कर लिया, आखिर हिम्मत नहीं थी उसमें उसकी घटिया बातों को बर्दाश्त करने की, तो उसने उससे दूर रहना ही ठीक समझा। अर्पिता जी चेयर पर बैठ गईं, तो आरवी ने टेबल खिसकाकर उस पर सुभाष जी के पैर को रखा और तेल लगाकर उनकी मालिश करने लगी। श्याम अंदर चला गया। अर्पिता जी आरवी को देख रही थी जिसका पूरा ध्यान सुभाष जी की मालिश करने पर था। वहीं सुभाष जी भी लबों पर मुस्कान सजाए उसे ही देख रहे थे।